नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार चरम पर। मेनका गांधी और कुमारी शैलजा सहित कई प्रमुख उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों को मिले बम की धमकी वाले ईमेल के बारे में मामला दर्ज किया, जांच जारी। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस आज। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार में कल तक भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिणी चीन के क्वांगतुंग प्रांत में राजमार्ग ढहने से 24 लोगों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 7 मई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार संविधान की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात के बनासकांठा के डीसा में आज एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था हर हाल में बनाई रखी जाएगी।
बाबा साहब का अम्बेडकर का संविधान, इन लोगों ने 60-70 साल तक राज किया लेकिन पूरे देश में लागू नहीं कर पाए थे। कश्मीर में ये संविधान लागू नहीं हुआ था। कश्मीर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था। ये मोदी है जिसने आकर के 370 हटा करके संविधान को कश्मीर में लागू किया।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कटघोरा शहर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगर तीसरी बार सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ में अगले 2 वर्षों में माओवाद की समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में माओवाद को बढ़ावा दिया है। असम के धुबरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां गारंटी कार्ड को लागू किया जा रहा है।
आप रेवंत रेड्डी से पूछेंगे कि रेवंत जी तेलंगाना में आप क्या कर रहे हैं, तो वो आपको सारे काम गिराएंगे। वो कहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी चुनाव से पहले उनको पूरा करने का काम कर रहा हूँ। आज कर्नाटका के सीएम से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो कर्नाटका के सीएम आपको बताएंगे कि जो कांग्रेस ने गारंटी चुनाव से पहले दी उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं।
विभिन्न राजनीतिक दलों के कई प्रमुख उम्मीदवारों ने आज अलग अलग लोकसभा सीटों पर नामांकन दाखिल किए। नामांकन से पहले सभी प्रत्याशियों ने रोड शो भी किया। एक रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न दलों के कई प्रमुख प्रत्याशियों ने आज नामांकन पत्र दाखिल किए। वरिष्ठ भाजपा नेता मेनका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामभुआल निषाद और बसपा के उदय राज वर्मा चुनावी मैदान में हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के खिलाफ अपना पर्चा दाखिल किया। मौजूदा सांसद भाजपा के लल्लू सिंह ने भी फैजाबाद लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र किया। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा है। इसके अलावा हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस सीट से भाजपा के अशोक तंवर अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोकसभा चुनाव पर आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला में आज हम मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट की जानकारी दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट हमेशा से चर्चा में रही है। विदिशा संसदीय क्षेत्र में स्थित सांची के स्तूप ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से दुनिया के कई देशों तक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। विदिशा सीट भाजपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी विदिशा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस बार विदिशा में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा के बीच है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में 19,38,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा पुरुष और 9,34,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। विदिशा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 7 पर भाजपा का और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में भाजपा के रमाकांत भार्गव ने कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को करीब 5 लाख वोटों के अंतर से हराया था। मौजूदा चुनाव में भी ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों को बम की धमकी वाली ईमेल मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न स्कूलों को बम की धमकी संबंधी ईमेल को फर्जी करार दिया था। मंत्रालय ने कहा कि अब तक तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से बात की और इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। गुजरात और महाराष्ट्र का आज 65वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल देवव्रत ने गुजरात और राज्य के बाहर रहने वाले सभी गुजरातियों और गुजरात के लिए प्रेम और सम्मान रखने वाले सभी लोगों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने भी राज्य के नागरिकों से एक नया समृद्ध और मजबूत महाराष्ट्र बनाने के लिए साथ आने की अपील की। दक्षिणी चीन के क्वांगतुंग प्रांत में भारी वर्षा के कारण राजमार्ग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से लगभग 24 लोगों की मौत हो गई है। राज्य समाचार एजेंसी ने कहा है कि क्वांगतुंग प्रांत में मिझोउ शहर और दाबो काउंटी के बीच सड़क का एक हिस्सा आज सुबह धंस गया। इस घटना से राजमार्ग पर 20 वाहन फंस गए। घनी आबादी वाले क्वांगतुंग प्रांत में पिछले कुछ दिनों में तेज वर्षा हुई है, जिससे कुछ क्षेत्रों में गंभीर बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। प्रांत में बचाव कार्य जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
बारिश का मौसम आने वाला है, तैयारी कर ली ना? गार्डन में नए पौधे लगा देना, नमी मिलेगी तो अच्छे से लग जाएगा।
ये तैयारी तो हो गई, मगर असली तैयारी हुई कि नहीं?
असली तैयारी मतलब?
बारिश का पानी बचाने की तैयारी, बोले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी।
ये भला हम कैसे भूल सकते हैं? बारिश से पहले ही हमने छत और पाइप सब साफ करवा दिए। अब सीधे बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे।
सबने कैच द रेन कैंपेन से जुड़ के वर्षा का जल बचाने की तैयारी कर ली है, आप भी जुड़िए।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार में कल तक भीषण लू जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि देश के दक्षिणी हिस्सों में भी शुक्रवार तक इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र, रायलसीमा, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक और मध्य भारत में रविवार तक लू चलने की संभावना है। वहीं कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, केरल और माही में अगले 5 दिनों तक मौसम गर्म और आर्द्र रह सकता है। शुक्रवार तक गांगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी झारखंड, उत्तरी ओडिशा और रायलसीमा में अधिकतम तापमान 44 और 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस बीच पूर्वोत्तर भारत और कल तक तूफान और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 3 से 6 मई तक आंधी और गरज के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। समाचार कक्ष से जया भारती।
आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने बताया कि फिलहाल भीषण लू से राहत मिलने की संभावना नहीं है।
अभी जो पश्चिम बंगाल और का जो गंगटी इलाका है, पुरुलिया है 44.1, मालदा है वहाँ भी सीवियर हीटवेव चल रहा है। उड़ीसा में थोड़ा तापमान 1 से 2 डिग्री फॉल हुआ है, फिर भी जो तालचेर है, तितलागढ़ है, वहाँ भी 45 चल रहा है। जैसे हाईएस्ट तालचेर आया वहाँ भी हीटवेव चल रहा है। बिहार में हीटवेव है और बिहार में भी तापमान सुपौल, पटना, पूर्णिया सारे 40, 41, 42 है। रायलसीमा में तापमान है आज सबसे हाईएस्ट दर्ज किया है वो तिरुपति है 45.6, नंदियाल 45.4 और हमारा जो वार्निंग है उड़ीसा में काल से हीटवेव से थोड़ा राहत मिलेगा, फिर भी ऑरेंज कलर 2 तारीख के लिए है। हमारा जो बंगाल का इलाका है वहाँ और 2 दिन रहेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति मुर्मू का स्वागत किया। हवाई अड्डे से राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी पहुंची और भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति आज शाम पूरे विधि विधान के साथ सरयू आरती में भी शामिल हुई। अप्रैल में सकल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में अब तक का सबसे अधिक 2,10,000 करोड़ रुपए का संग्रह दर्ज किया गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 12.4% की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले शिक्षा और छात्रावास भत्ते में बढ़ोतरी की है। ये निर्णय इस वर्ष जनवरी में महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने के बाद आया है। ये निर्णय कार्मिक लोक शिकायत और प्रशिक्षण मंत्रालय के वर्ष 2018 के निर्देश का पालन करता है, जिसके अनुसार जब भी महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा तो भत्ते और रियायत में भी 25% की वृद्धि होगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से चल रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 ओवर में 4 विकेट पर 117 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स चौथे जबकि पंजाब किंग्स 8वें स्थान पर है। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय युवा मुक्केबाज आर्यन, यशवर्धन सिंह, प्रियांशु और साहिल ने आज सेमीफाइनल में पहुंचकर 4 पदक पक्के किए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के 3रे चरण का प्रचार चरम पर। मेनका गांधी और कुमारी सैलजा सहित कई प्रमुख उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किये। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों को मिले बम की धमकी वाले ईमेल के बारे में मामला दर्ज किया, जांच जारी। गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस आज। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार में कल तक भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिणी चीन के क्वांगतुंग प्रांत में राजमार्ग ढहने से 24 लोगों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।